कार्य चाहे व्यवहारिक हो अथवा पारमार्थिक, जो समय संबंधी विवेक और सावधानी नहीं रखते उन्हें इसके दुष्परिणाम जन्म जन्मांतरों तक भुगतने पड़ते हैं। आज अपने पास सभी परिस्थितियां हैं, साधन हैं, मनुष्य शरीर मिला है, बुद्धि और विचार की बहुमूल्य विरासत जो हमें मिली है वह यह समझ लेने के लिए है कि आपका समय सीमाओं से प्रतिबंधित है। सृष्टि के दूसरे जीवों में से कई तो लंबी आयु वाले भी होते हैं, किंतु मनुष्य की अवस्था अधिक से अधिक 100 वर्ष है। उसमें भी कितना समय अवस्था के अनुरूप व्यर्थ चला जाना है, फिर जो शेष बचता है उसका उपयोग यदि सांसारिक और आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं कर पाए तो कौन जाने यह परिस्थितियां फिर कभी मिलेंगी या नहीं। आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाले भी जब समय का ठीक ठाक उपयोग नहीं कर पाते, इस संबंध में जागरूक और विवेकशील नहीं होते तो बड़ा आश्चर्य होता है। इससे अच्छे तो वे लोग ही हैं जो बेचारे किसी प्रकार जीवन निर्वाह के साधन और आजीविका जुटाने में ही लगे रहते हैं। उन्हें यह पछतावा तो नहीं होता कि जीवन के बहुमूल्य क्षणों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके। आजीविका भी अध्यात्म का एक अंग है, अतएव संपूर्ण न सही, कुछ अंशों में तो उन्होंने मानव जीवन का सदुपयोग किया। हाथ पर हाथ रखकर आलस्य में समय गंवाने वाले सामाजिक जीवन में गड़बड़ी ही फैलाते हैं, भले ही वे कितने ही बुद्धिमान भजनोपदेशक, कथावाचक, पंडित या संत सन्यासी ही क्यों न हों। समय का सदुपयोग करने वाला घसियारा बेकार बैठे रहने वाले पंडित से बढ़कर है, क्योंकि वह समाज को किसी न किसी रूप में समुन्नत बनाने का प्रयास करता ही है। आलस में समय गंवाने वाले कुसंग और कुबुद्धि के द्वारा उल्टे रास्ते तैयार करते हैं। कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। जब कुछ काम नहीं होता तो खुराफात ही सूझती है। जिन्हें किसी सत्कार्य या स्वाध्याय में रुचि नहीं होती, खाली समय में कुसंगति, दुर्व्यसन, ताश तमाशे और तरह तरह की बुराइयों में ही अपना समय बिताते हैं। समाज में अव्यवस्था का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, अधिकांश बुराइयां, कलह और झंझट बढ़ाने का श्रेय उन्हीं को है जो व्यर्थ में समय गंवाते रहते हैं। मनुष्य लंबे समय तक निष्प्रयोजन खाली बैठा नहीं रह सकता, अतएव यदि वह भले काम नहीं करता तो बुराई करने में उसे देर न लगेगी। उसे अच्छा या बुरे, सच्चा हो चाहे काल्पनिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि उसे सही विषय न मिले तो वह बुराइयां ही ग्रहण करता है और उन्हें ही समाज में बिखेरता हुआ चला जाता है। मनुष्य के अंतःकरण में ही उसका देवत्व और असुरत्व विद्यमान है। जब तक हमारा देवता जागृत रहता है और हम विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहते हैं, तब तक आंतरिक असुरता भी दबी हुई पड़ी रहती है, पर यह प्रसुप्त वासनाएं भी अवकाश के लिए चुपचाप अंतर्मन में जगती रहती हैं, समय पाते ही देवत्व पर प्रहार कर बैठती हैं। जब यह दिखाई दे कि अब अपने पास कोई काम शेष नहीं रहा तो मनुष्य अपने निवास के आसपास की सफाई, वस्त्रों की हिफाजत, घर की मरम्मत, खेतों की देखरेख, लेखन, ज्ञान विषयक चर्चा या किसी जीवनोपयोगी साहित्य का स्वाध्याय ही करने लग जाए। इससे टूटी फूटी वस्तुओं की साज संभाल, स्वास्थ्य रक्षा और ज्ञान की वृद्धि ही होगी। समय का मूल्यांकन केवल रुपए पैसे से ही नहीं हो सकता। जीवन में और भी अनेकों पारमार्थिक व्यवसाय हैं, उन्हें भी देखना और ज्ञान प्राप्त करना हमारा धर्म होना चाहिए। सत्कार्यों में लगाए गए समय का परिणाम सदैव सुखदायक ही होता है। लगातार काम न करने का तथा किसी व्यवसाय में अभिरुचि न होने का कारण यह है कि एक सी स्थिति में रहते हुए मनुष्य को उकताहट पैदा होती है। यह स्वाभाविक भी है, मनोरंजन की आवश्यकता सभी को होती है। संत महात्मा भी प्रकृति दर्शन और तीर्थयात्रा आदि के रूप में मनोरंजन प्राप्त किया करते हैं। यह उकताहट यदि संभाली न जाए तो किसी व्यसन के रूप में ही फूटती है। व्यसन की शुरुआत खाली समय में कुसंगति के कारण ही होती है। आजकल इस प्रकार के साधनों की किसी प्रकार की कमी नहीं है। निरुत्साह और मानसिक थकावट दूर करने के लिए विविध मनोरंजन के साधन आज बहुत बढ़ गए हैं, किंतु समय के सदुपयोग और जीवन की सार्थकता की दृष्टि से इनमें से उपयोगी बहुत कम ही दिखाई देते हैं। अधिकांश तो धन साध्य और मनुष्य का नैतिक पतन करने वाले ही हैं। इसलिए यह भी आवश्यक हो गया है कि जब कुछ समय श्रम से उत्पन्न थकावट को दूर करने के लिए निकालें तो यह भली भांति विचार कर लें कि यह जो समय उक्त कार्य में लगाने जा रहे हैं उसका आध्यात्मिक उत्थान और आत्मा विकास के लिए क्या सदुपयोग हो रहा है। मनोरंजन केवल प्रसुप्त वासना की पूर्ति के लिए न हो वरन उसमें भी आत्म कल्याण की भावना सन्निहित बनी रहे तो उस समय का उपयोग सार्थक माना जा सकता है। फुर्सत और खाली समय का उपयोग अच्छे बुरे किसी भी काम में हो सकता है। नई नई विद्या, कला, लेखन, शास्त्रार्थ के द्वारा नई सूझ और आध्यात्मिक बुद्धि जागृत होती है। इससे अपना व समाज दोनों का ही कल्याण होता है। सत्कर्म में लगाए हुए समय से मनुष्य का जीवन सुखी, समुन्नत तथा उदात्त बनता है। जापान की उन्नति का प्रमुख कारण फुर्सत के समय का सदुपयोग ही है। वहां सरकारी काम के घंटों के बाद का समय लोग कुटीर उद्योगों में लगाते हैं, छोटे मोटे खिलौने, घड़ियां आदि बनाते हैं। इससे वहां की राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ी है, लोगों की जीवन सुखी हुआ है और नैतिक सदाचार का प्रसार हुआ है। खाली समय का उपयोग जिस प्रकार के कार्यों में करेंगे वैसी ही उन्नति अवश्य होगी। समय जरा भी नष्ट मत होने दीजिए। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो। प्रयत्न और पुरुषार्थ से सभी कुछ पाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसे एक बार खोने के बाद कभी नहीं पाया जा सकता, और वह है समय। एक बार हाथ से निकला हुआ समय फिर कभी हाथ नहीं आता। कहावत है, बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं बुलाए जा सकते। समय परमात्मा से भी महान है। भक्ति साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय पुनः नहीं मिलता। समय ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना है। समय का दुरुपयोग करना जीवन का नष्ट करना है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। वह प्रतिक्षण मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा को जाकर विलीन होता रहता है। समय की अजस्र धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। फ्रैंकलिन ने कहा है, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। निस्संदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। सचमुच जो व्यक्ति अपना तनिक सा भी समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, उन्हें समय अनेकों सफलताओं से वंचित कर देता है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को इसलिए हरा दिया कि वहां के सैनिकों ने 5 मिनट का विलंब कर दिया उसका सामना करने में। लेकिन वही नेपोलियन कुछ ही मिनटों में बंदी बना लिया गया, क्योंकि उसका एक सेनापति कुछ ही मिनट विलंब से आया। वॉटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय इसी कारण से हुई। समय की उपेक्षा करने पर देखते देखते विजय का पासा पराजय में पलट जाता है, लाभ हानि में बदल जाता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता का एक ही आधार स्तंभ है कि उन्होंने अपने समय का पूरा पूरा उपयोग किया, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस समय लोग मनोरंजन, खेल तमाशों में मशगूल रहते हैं, व्यर्थ आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं, उस समय महान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों का सृजन करते रहते हैं। ऐसा एक भी महापुरुष नहीं जिसने अपने समय को नष्ट किया हो और वह महान बन गया हो। समय बहुत बड़ा धन है, भौतिक धन से भी अधिक मूल्यवान। जो इसे भली प्रकार उपयोग में लाता है, वह सभी तरह के लाभ प्राप्त कर सकता है। छोटे से जीवन में भी बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेता है। वह छोटी उम्र में ही दूसरों से बहुत आगे बढ़ जाता है। समय जितना कीमती और फिर न मिलने वाला तत्व है, उतना उसका महत्व प्रायः हम लोग नहीं समझते। हम में से बहुत से लोग अपने समय का बहुत ही कम सदुपयोग करते हैं, उसको व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं। आश्चर्य है, समय ही ऐसा पदार्थ है जो एक निश्चित मात्रा में मनुष्य को मिलता है, लेकिन उसका उतना ही अधिक अपव्यय भी होता है। हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा कितना समय आवश्यक और उपयोगी कार्यों में लगता है और कितना व्यर्थ के कामों में, सैर सपाटे, मित्रों में गपशप, खेल तमाशे, मनोरंजन, आलस्य, प्रमाद आदि में हम कितना समय नष्ट करते हैं। व्यर्थ की बकवास, अनावश्यक कार्यों में हम जितना समय नष्ट करते हैं, यदि उसका लेखा जोखा लें तो प्रतीत होगा कि अपने जीवन धन का एक बहुत बड़ा भाग हम अपने आप ही व्यर्थ नष्ट कर डालते हैं समय के रूप में। काश एक एक मिनट, घंटे, दिन का हम उपयोग करें तो कोई कारण नहीं कि हम जीवन में महान सफलताएं प्राप्त न करें। समय की बर्बादी का सबसे पहला शत्रु है किसी काम को आगे के लिए टाल देना। आज नहीं कल करेंगे, इस कल के बहाने हमारा बहुत सा वक्त नष्ट हो जाता है। स्वेतमार्डन ने लिखा है, इतिहास के पृष्ठों में कल की धारा पर कितने प्रतिभावानों का गला कट गया, कितनों की योजनाएं अधूरी रह गईं, कितनों के निश्चय बस यूं ही रह गए, कितने पछताते, हाथ मलते रह गए। कल असमर्थता और आलस्य का द्योतक है। इस कल से बचने के लिए ही महात्मा कबीर ने चेतावनी देते हुए कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। कल पर अपने कोई भी काम न टालें, जिन्हें आज करना है उन्हें आज ही पूरा कर लें। स्मरण रखिए, प्रत्येक काम का अपना अवसर होता है, और अवसर वही है जब वह काम आपके सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व ही समाप्त हो जाता है तथा बोझ भी बढ़ता जाता है। स्वेतमार्डन ने लिखा है, बहुत से लोगों ने अपना काम कल पर छोड़ा और वे संसार में पीछे रह गए, अन्य लोगों द्वारा प्रतिद्वंदिता में हरा दिए गए। समय का ठीक ठीक लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक समय में अनेकों काम करना चाहते हैं, उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता और उनका अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। जो काम स्वयं करना है, उसे स्वयं ही पूरा करें। अपना काम दूसरों पर छोड़ना भी एक तरह से दूसरे दिन काम टालने के समान ही है। ऐसे व्यक्ति का अवसर भी निकल जाता है और उसका काम भी पूरा नहीं होता। जरा विचार कीजिए, आपको अमुक दिन अमुक गाड़ी से बंबई जाना है। अगर आप गाड़ी के सीटी देने के एक मिनट बाद स्टेशन पहुंचे तो फिर आपको वह गाड़ी, वह दिन, वह समय कभी नहीं मिलेगा। निश्चित समय निकल जाने के बाद आप किसी दफ्तर में जाएं तो निश्चित है आपका काम नहीं होगा। आपको स्मरण होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जॉर्ज वाशिंगटन आदि को सड़क पर से गुजरते देखकर लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। अपने काम और समय का इस तरह मेल रखें कि उसमें एक मिनट का भी अंतर न आए। तभी आप अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग कर सकेंगे। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अपना अधिकार जमा लेता है। कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। वैसे बीमारी तकलीफ आदि में विश्राम करना तो आलस्य नहीं है। थक जाने पर नींद के लिए विश्राम करना भी बुरा नहीं है। थकावट हो, नींद आए तो तुरंत सो जाएं, लेकिन आंख खुलने पर उठ पड़ें, चारपाई न तोड़ें। अभी उठते हैं कहते रहें तो यही आलस्य का मंत्र है। आंखें खुली कि तुरंत अपने काम में लग जाएं। रस्किन के शब्दों में, जवानी का समय तो विश्राम के नाम पर नष्ट करना ही घोर मूर्खता है, क्योंकि यही वह समय है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं, उसी तरह अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न भी व्यर्थ चला जाता है। विश्राम करें, अवश्य करें। अधिक कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन उसका भी समय निश्चित कर लेना चाहिए और विश्राम के लिए ही लेटना चाहिए। समय बड़ा मूल्यवान है, उसे बड़ी कंजूसी से व्यय करना चाहिए। जितना अपने समय धन को बचाकर उसे आवश्यक उपयोगी कार्यों में लगावेंगे, उतनी ही अपने व्यक्तित्व की महत्ता एवं कीमत बढ़ती जाएगी। नियमित समय पर काम करने का अभ्यास डालें। इसकी आदत पड़ जाने पर आपको स्वयं ही इसमें बड़ा आनंद आने लगेगा। यदि मनुष्य प्रतिदिन किसी काम विशेष में थोड़ा थोड़ा समय भी लगाए तो वह उससे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। महामनीषी स्वेटमार्टन ने कहा है, जीवन भर एक विषय में नियमित रूप से प्रतिदिन एक घंटा लगाने वाला व्यक्ति उस विषय का उद्भट विद्वान बन सकता है। जरा अनुमान लगाए, कोई भी प्रतिदिन एक घंटे में 20 पृष्ठ पढ़ता है तो साल में 7300 पृष्ठ पढ़ डालेगा। अर्थ हुआ 100 पृष्ठ की 73 पुस्तकें वह एक साल में पढ़ लेगा। 10 वर्ष में 730 पुस्तकें पढ़ने वाले व्यक्ति के ज्ञान का विचार स्तर कैसा होगा, इसके बारे में पाठक स्वयं ही अंदाज लगा सकते हैं। अतः समय को मामूली न समझें। नियमित रूप से कोई भी काम आप करेंगे तो धीरे धीरे उसमें बहुत बड़ी योग्यता हासिल कर लेंगे, यह निश्चित है। समय की बर्बादी आजकल मनोरंजन के नाम पर भी बहुत होती है। रेडियो, सिनेमा, खेल तमाशे, ताश, शतरंज आदि में हम नित्य ही अपना बहुत सा समय बर्बाद करते रहते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार अपने पुत्र मणिलाल को पत्र में लिखा था, खेलकूद मनोरंजन का समय 12 वर्ष की उम्र तक है। आज हम इसमें अपना कितना वक्त खर्च करते हैं, यह स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। मनोरंजन खेल आदि को जीवन में रखा ही जाए तो उसके लिए भी एक नियत समय रखना चाहिए। अपने आसपास का वातावरण ऐसा रखना चाहिए कि अपना समय किसी कारण बर्बाद न हो। वक्त बर्बाद करने वाले दोस्तों से दूर की नमस्ते रखनी चाहिए। निठल्ले लोग ही अक्सर दूसरे का वक्त बर्बाद करने जा पहुंचते हैं। इन्हें दोस्त नहीं दुश्मन मानना ही उचित है। स्मरण रखिए, समय बहुत मूल्यवान वस्तु है। इससे आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। आप वक्त को नष्ट करेंगे तो वक्त भी आपको नष्ट कर देगा। वक्त के सदुपयोग पर ही आप कुछ बन सकते हैं। समय के सदुपयोग का महत्व समझिए। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपदा है। विद्वानों एवं महापुरुषों ने वक्त को सारी विभूतियों का कारणभूत हेतु माना है। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति कभी भी निर्धन अथवा दुखी नहीं रह सकते। कहने को कहा जा सकता है कि श्रम से ही संपत्ति की उपलब्धि होती है, किंतु श्रम का अर्थ भी वक्त का सदुपयोग ही है। असमय का श्रम पारिश्रमिक से अधिक थकान लाया करता है। मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, यदि वह अपने परिश्रम के साथ ठीक समय का सामंजस्य नहीं करेगा तो निश्चय ही इसका श्रम या तो निष्फल चला जाएगा अथवा अपेक्षित फल न ला सकेगा। किसान परिश्रमी है, किंतु यदि वह अपने श्रम को समय पर काम में नहीं लाता तो वह अपने परिश्रम का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। वक्त पर न जोतकर असमय पर जोता हुआ खेत अपनी उर्वरता को प्रकट नहीं कर पाता। असमय बोया हुआ बीज बेकार चला जाता है, वक्त पर न काटी गई फसल नष्ट हो जाती है। संसार में प्रत्येक काम के लिए निश्चित वक्त पर न किया हुआ काम कितना भी परिश्रम करने पर भी सफल नहीं होता। प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक निश्चित वक्त पर होता है। वक्त पर ग्रीष्म तपता है, वक्त पर पानी बरसता है, वक्त पर ही शीत आता है, वक्त पर ही शिशिर होता और वक्त पर ही बसंत आकर वनस्पतियों को फूलों से सजा देता है। प्रकृति के इस ऋतुक्रम में जरा सा भी व्यवधान पड़ जाने से न जाने कितने प्रकार के रोगों एवं इति भीति का प्रकोप हो जाता है। चांद, सूरज, ग्रह नक्षत्र सब समय पर ही उदय अस्त होते वक्त के अनुसार ही अपनी परिधि एवं कक्ष में परिभ्रमण किया करते हैं। इनकी सामयिकता में जरा सा व्यवधान पड़ने से सृष्टि में अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं और प्रलय के दृश्य दिखने लगते हैं। समय पालन ईश्वरीय नियमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नियम है। जीवन का हर क्षण एक उज्ज्वल भविष्य की संभावना लेकर आता है। हर घड़ी एक महान मोड़ का समय हो सकती है। मनुष्य यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि जिस वक्त, जिस क्षण और जिस पल को यूं ही व्यर्थ में खो रहा है, वही क्षण, वही वक्त उसके भाग्योदय का वक्त नहीं है। क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वही हमारे लिए अपनी झोली में सुंदर सौभाग्य की सफलता लाया हो। सबके जीवन में एक परिवर्तनकारी वक्त आया करता है, किंतु मनुष्य उसके आगमन से अनभिज्ञ रहा करता है। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य हर क्षण को बहुमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं जाने देता। कोई भी क्षण व्यर्थ न जाने देने से निश्चय ही वह क्षण हाथ से छूटकर नहीं जा सकता जो जीवन में वांछित परिवर्तन का संदेशवाहक होगा। सिद्धि की अनिश्चित घड़ी से अनभिज्ञ साधक जिस प्रकार हर समय लौ लगाए रहने से उसको पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार हर क्षण को सौभाग्य के द्वार खोल देने वाला समझकर महत्वाकांक्षी कर्मवीर जीवन के एक छोटे से भी क्षण की उपेक्षा नहीं करता और निश्चित ही सौभाग्य का अधिकारी बनता है। कोई भी दीर्घसूत्री व्यक्ति संसार में आज तक सफल होते देखा सुना नहीं गया है। जीवन में उन्नति करने और सफलता पाने वाले व्यक्तियों की जीवनगाथा का निरीक्षण करने पर निश्चय ही उनके उन गुणों में समय के पालन एवं सदुपयोग को प्रमुख स्थान मिलेगा जो जीवन की उन्नति के लिए अपेक्षित होते हैं। हर मनुष्य को वक्त का, छोटे से छोटे क्षण का मूल्य एवं महत्व समझना चाहिए। जीवन का वक्त सीमित है और काम बहुत है। आने से लेकर परिवार, समाज एवं राष्ट्र के दायित्वपूर्ण कर्तव्यों के साथ मुक्ति की साधना तक कामों की एक लंबी श्रृंखला चली गई है। कर्तव्यों की इस अनिवार्य परंपरा को पूरा किए बिना मनुष्य का कल्याण नहीं। इसी कर्म क्रम को इसी एक जीवन के सीमित वक्त से ही पूरा कर डालना है, क्योंकि आत्मा की मुक्ति मानव जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी जीवन में नहीं हो सकती और मुक्ति का प्रयास तभी सफल हो सकता है जब वह उसके सहायक पूर्व प्रयासों को पूरा करता है। अस्तु, जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति को पाने के लिए उसकी साधना के अतिरिक्त सारे कर्तव्य क्रम को इसी जीवन के सीमित वक्त में ही पूरा करना होगा। इतने विशाल कर्तव्य क्रम को मनुष्य पूरा तभी कर सकता है जब वह जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल और एक एक निमेश को सावधानी के साथ उपयोगी एवं उपयुक्त दिशा में प्रयुक्त करे। नहीं तो किसने देखा है कि उसके जीवन का अंतिम छोर कितनी दूरी पर ठहरा हुआ है। जीवन की अवधि सीमित होने के साथ अनिश्चित एवं अज्ञात भी है। जो क्षण हमारे पास है, हृदय के जिस स्पंदन में गति है, वही हमारा है। श्वास का एक आगमन ही हमारा है, बाकी सब पराए हैं, न जाने दूसरे क्षण हमारे बन पाएंगे या नहीं। अतएव हर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो क्षण, जो श्वास उसके अधिकार में है, उसे भगवान की महती कृपा और जीवन का उच्चतम अंतिम अवसर समझकर इस सावधानी एवं संलग्नता से उपयोग करे कि मानो इसी एक क्षण में सब कुछ दक्षता है। अपने वर्तमान क्षण को छोड़कर भविष्य की युगीन अवधि पर विश्वास करना विवेक का बहुत बड़ा अपमान है। जिस भविष्य पर आप अपने जीवन विकास के कार्यों, अपने विकास कर्तव्यों को स्थगित करने की सोच रहे हैं, वहां ही जाएगा। यह जीवन निश्चितता अनिश्चितता के बीच निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कर्तव्यों के विषय में आने वाले कल की कल्पना एक अंधविश्वास है। उसकी प्रतीक्षा करने वाले नासमझ इस दुनिया में पश्चाताप करते हुए ही विदा होते हैं। आने वाला कल ऐसा आकाश कुसुम है जो सुना तो गया पर पाया कभी नहीं गया। किंतु दुर्भाग्य है कि हर स्थगनशील व्यक्ति सदा ही उसी कल पर विश्वास किए हुए उपस्थित वर्तमान में सोता रहता है, और जब उसका प्रतीक्षित कल कभी नहीं आता, तब उसके पास उस बीते हुए कल के लिए रोने पछताने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता जिसकी कि उसने वर्तमान में अवहेलना की थी और जो कि किसी भी मूल्य पर वापस नहीं लाया जा सकता। समय की चूक पश्चाताप की हूक बन जाती है। जीवन में कुछ करने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे अपने किसी भी कर्तव्य को भूलकर भी कल पर न डालें जो आज किया जाना चाहिए। आज के काम के लिए आज का ही दिन निश्चित है और कल के काम के लिए कल का दिन निर्धारित है। आज का काम कल पर डाल देने से कल का भार दोगुना हो जाएगा जो निश्चय ही कल के समय में पूरा नहीं हो सकता। इस प्रकार आज का कल पर और कल का परसों पर ठेला हुआ काम इतना बढ़ जाएगा कि वह फिर किसी भी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता। जिस स्थगनशील स्वभाव तथा दीर्घसूत्री मनोवृत्ति ने आज का काम आज नहीं करने दिया, वह कल कब करने देगी ऐसा नहीं माना जा सकता। स्थगन स्थगन को और क्रिया क्रिया को प्रोत्साहित करती है, यह प्रकृति का एक निश्चित नियम है। बासी काम बासी भोजन की तरह ही अरुचिकर हो जाया करता है। फिर न तो उसे करने की इच्छा होती है और करने पर सुचारू रूप से नहीं हो पाता। कल के काम का दबाव बासी काम को एक बेगाड़ बना देगा जो रोज झींक कर ही किया जा सकेगा। ऐसा होने से अभ्यास बिगड़ता है और उनका विकृत प्रभाव कल के नए काम पर भी पड़ता है। इस प्रकार स्थगनशीलता कर्तव्यों में मनुष्य की रुचि तथा दक्षता को नष्ट कर देती है। इन दोनों विशेषताओं से रहित कर्तव्य परिश्रम का भरपूर मूल्य पाकर भी अपेक्षित पुरस्कार एवं पारितोषिक नहीं ला पाते। जीवन में सफलता के लिए जहां परिश्रम एवं पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता है, वहां सामयिकता का सामंजस्य उससे भी अधिक आवश्यक है। जिस वक्त को बर्बाद कर दिया जाता है, उस वक्त में किया जाने के लिए निर्धारित श्रम भी निष्क्रिय रहकर नष्ट हो जाता है। श्रम तभी संपत्ति बनता है जब वह वक्त से संयोजित कर दिया जाता है, और वक्त तभी संपदा के रूप में संपन्नता एवं सफलता ला सकता है जब उसका श्रम के साथ सदुपयोग किया जाता है। समय का सदुपयोग करने वाले स्वभावतः परिश्रमी बन जाते हैं, जबकि असामयिक परिश्रमी आलसी की कोटि का ही व्यक्ति होता है। वक्त का सदुपयोग ही वास्तविक श्रम है, और वास्तविक श्रम अर्थ धर्म काम मोक्ष का संवाहन पुरुषार्थ एवं परमार्थ है। समय पर कार्य सफलता का सोपान। अब्राहम लिंकन जब प्रातःकाल टहलने जाते तो लोग अपनी घड़ियां मिला लेते थे कि समय क्या है। उनका समय नियम और क्रम पूर्णतया व्यवस्थित था, उसमें कभी यत्किंचित भी अंतर नहीं आता था। इसलिए लोग उनके पैरों की एक विशेष प्रकार की आवाज़ से समझ लेते थे कि लिंकन ही जा रहा है और बिस्तर पर